ओम शांति।
युवक एक रास्ते से जा रहा था और उसे एक तालाब दिखता है जिसमें बहुत गंदा पानी होता है, परंतु उस तालाब में उस युवक को एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है और हो ना हो वो सोचता है यही वो सोने का हीरे का हार है। और उसे ये भी पता होता है कि बहुत अच्छा, और उसे ये भी पता होता है कि ये हार यदि मैं राजा को दे दूं तो बहुत अच्छा पुरस्कार मिलेगा, और इसी मंशा से वो अपना हाथ उस पानी में डालता है। परंतु जैसे ही हाथ पानी में डालता है वो हार, वो चमकती हुई वस्तु लुप्त हो जाती है, निराश होता है, फिर से एक बार हाथ डालता है और गहरे पानी में डालता है, परंतु हाथ गंदा हो जाता है पर हाथ में कुछ नहीं आता। सोचता है मुझे अब इस पानी में उतरना चाहिए, और उस पानी में उतरता है, फिर से हाथ डालता है, ढूंढता है परंतु कुछ नहीं मिलता। फिर उदास होता है, सोचता है अब पूरा ही पानी में कूद जाऊं, और वो जोर से पानी में कूदता है, हार को ढूंढता है पर कुछ नहीं दिखता। पर जब जब बाहर आता है तब एक चमकती हुई वस्तु जरूर दिखती है। सोचता है ये क्या हो रहा है। वहां से एक तपस्वी, एक सन्यासी गुजर रहा होता है। वो सन्यासी पूछता है क्या हुआ, क्यों परेशान हो, पर वो युवक, क्योंकि ऐसी बातें किसी को बताई थोड़ी जाती है, वो कहता है कुछ नहीं ऐसे ही। वो सन्यासी कहता है बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो बताता है कि इस राज्य के रानी का हार, राजकुमारी का हार चोरी हो गया है, और जो ढूंढेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, और मैं देख रहा हूं कि वहां पर चमकता हुआ हार है, कोई वस्तु है, पर जब भी मैं उतरता हूं हाथ में कुछ नहीं आता, क्या करूं। आप भी देखो वो हार दिखाई दे रहा है। वो सन्यासी कहता है हार नीचे नहीं ऊपर लटक रहा है झाड़ की डाली पर, जो नीचे दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है, परंतु वास्तविक हार ऊपर है, परंतु सारी मनुष्य जाति उसी प्रतिबिंब के पीछे है, और सारा जीवन उस प्रतिबिंब को ढूंढने में, पाने में लगा देती है, परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो असली वस्तु है वो वहां है, क्योंकि असली जो शांति है और जो सुख है और जो आनंद है वो इन वस्तुओं में नहीं जहां पर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जो नीचे दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब मात्र है। हम किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक स्वयं स्वयं से ये प्रश्न पूछना है कि जिसके पीछे मैं लगा हूं क्या वो सत्य है या असत्य है, रियल है या अनरियल है, सार है या असार है, पाप है या पुण्य है, नित्य है या अनित्य है। अनित्य के पीछे संसार पागल है, क्या मैं भी उसी अनित्य के पीछे तो नहीं। स्वयं की चेकिंग करनी है। स्वयं को देखना है और ये भट्टी इसी के लिए है। स्वयं स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं स्वयं को देखना, स्वयं का आत्ममंथन, सेल्फ एनालिसिस करना, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे स्वयं स्वयं को देखना है। मैं स्वयं भगवान के कितने साथ रहता हूं, जो पिया के साथ है उसके साथ क्या है, कौन सी बरसात हो रही है उधर भी और इधर भी दोनों तरफ। इस बरसात में स्वयं को भिगो देना है, इस बरसात से स्वयं को सराबोर कर देना है, डूब जाना है। ज्ञान के सागर में, क्योंकि ये अनंत का सागर है, एक नमक के पुतले ने सोचा एक बार कि मुझे ये देखना है सागर कितना गहरा है, कितनी उसकी धार है। उस अतलता सागर में वो कूद पड़ा ये देखने के लिए कि कितना गहरा है। और जैसे जैसे वो नमक का पुतला नीचे जाने लगा क्या हो गया, डूबने लगा, समाने लगा। और एक समय आया कि सागर, वो पानी और वो नमक एक हो गए। ऐसा ये सागर है, इसमें कोई डूबता नहीं परंतु सागर समान बन जाता है। सागर और मैं एक। और झूठ और मिथ्या और असार के पीछे जब हम भागते हैं बहुत बड़े दंड के भागी स्वतः बन जाते हैं। ये भगवान किसी को दंडित नहीं करता, दंड स्वतः मिलता है। ड्रामा की मशीनरी ऐसी बनी हुई है कि जो पाप करेगा उसे दंड स्वतः मिलेगा, जो पुण्य करेगा उसे उस पुण्य का फल भी स्वतः मिलेगा। तो आज हम ब्राह्मणों की जो दंड संहिता है उसकी चर्चा करेंगे। ये दंड संहिता गॉडली पिनल कोड, डिवाइन पिनल कोड, टोटल 26 एक एक संहिता, एक एक नियम है, एक एक मर्यादा है। और जब जब उसका उल्लंघन होगा तब तक तब तब सजा मिलेगी और सजा सूक्ष्म होगी। कोई धर्मराज कहीं खड़ा नहीं है चाबुक लेकर जो हमें मारे, परंतु ब्राह्मण जीवन में सजा अर्थात कौन सी सजा मिलती है ब्राह्मण जीवन में, खुशी गायब, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, खुशी का गायब हो जाना ही दंड है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति न होना ही दंड है, मन भारी रहना, पश्चाताप का भाव रहना ही दंड है, उदास रहना ही दंड है, दुख की अनुभूति होना ही दंड है, मन नहीं लगना, मुरली में कोई रस न आना ही दंड है, सेवाओं से मन उब जाना ही दंड है। तो सबसे पहला अमृत वेला, किसी भी कारण से अमृत वेला छूट गया, मिस हो गया, लेट उठे या फिर उठकर भी नींद और उठकर भी कोई अनुभव नहीं और उठकर भी व्यर्थ संकल्प और उठकर भी साधारण अमृत वेला और उठकर भी उदासी और उठकर भी फ्रेश नहीं लगना, ये सभी ब्राह्मण जीवन के ही दंड है। तो क्या करे। अमृत वेले की तैयारी रात से चालू होनी चाहिए, अमृत वेले की तैयारी सारे दिन भर होनी चाहिए। यदि दिन में श्रीमत का उल्लंघन किया तो माया अमृत वेला सुलाकर बदला लेगी। इसलिए सबसे पहली धारणा अमृत वेला है, बाकी सब बाजू में। यदि अमृत वेला नहीं हो रहा है, कारण को ढूंढो, क्यों, किस कारण से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और क्या मैं करूं कि जिससे ये शक्तिशाली हो जाए। कितने ढेर सारे कार्य करने हैं, स्वयं को शक्ति से भरना है, बाबा से मिलन बनाना है, परम धाम का अनुभव करना है, अशरीरीपन का, विदेही स्थिति का, फरिश्ता स्वरूप का, अव्यक्त स्थिति का, कंबाइंड स्वरूप का, फरिश्ता स्वरूप का, अशरीरी स्थिति का अनुभव, विश्व को सकाश, प्रकृति को सकाश, स्वयं के हिसाब किताब चुकतु करने हैं, बहुत सारे काम करने। इसलिए जब अमृत वेला मिस होगा तो दिन भर क्या होगा, क्या होगा दिन भर, खुशी गायब, और क्या होगा भाइयों की तरफ से। अमृत वेला मिस, जब आंख खुली तो देखा 5:30 बज चुके हैं, सोचे अभी अमृत वेला कर लो, चलो क्या होगा स्थिति, स्थिति क्या होगी, सारे दिन भर ऊपर नीचे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला सुबह सुबह अपनी जीवन की गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप दिन भर चलती रहेगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को परमात्म प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो, कितना 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 कि किसी भी देहधारी का प्यार आकर्षित न करे। तो सबसे पहली मर्यादा, सबसे पहली धारणा है अमृत वेला। अगर यह टूटती है तो दिन में उदासी रहेगी, संघर्ष रहेगा, टकराव रहेगा, मन मुटाव रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पश्चाताप का भाव रहेगा। तो आज से सभी पक्का करेंगे, करेंगे सभी, क्या पक्का करेंगे कि जब तक ब्राह्मण जीवन है एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा एक भी दिन नहीं था 33 वर्ष की तपस्या जिसमें उन्होंने एक दिन भी अमृत वेला मिस किया हो, जब से शिव बाबा की प्रवेशता उनमें हुई तब से 93 एज तक। इसके लिए कोई एज का बहाना नहीं दे सकते, हम बूढ़े हैं, हम बीमार हैं, हमसे उठा नहीं जाता, कारण को ढूंढना है, क्यों नींद आती है, निद्रा जीत बनना है। कैसे बनेंगे निद्रा जीत, निद्रा जीत अर्थात ये नहीं कि नींद कम कर देना, निद्रा जीत अर्थात नींद हमारे वश में हो। और निद्रा जीत बनने की एक विधि है योग निद्रा। कौन सी विधि है, योग निद्रा। कितने लोग हैं इस सभा में जो योग निद्रा क्या है ये जानते, योग निद्रा कौन सी मुरली में आया है, कौन सी मुरली में आया है, क्लास में सुना है, अपने लिए अपनी एक कमेंट्री बनानी है योग निद्रा की। रात में जब सोए तो अपनी एक कमेंट्री बना के रखनी है, रेडी करके रखनी है, रेडीमेड कमेंट्री। योग निद्रा की कमेंट्री, उसमें 9 स्टेप्स है, योग निद्रा में। एक 15 मिनट सोना, परंतु ऐसा अनुभव हो कि 2 घंटे की नींद हो गई। शरीर को शिथिल करना, चेतना को संपूर्ण शरीर में घुमाना, विजुअलाइजेशन करना, संकल्प करना, श्वासों पर ध्यान देना और धीरे धीरे देह से बाहर निकलना, स्थूल शरीर को वहीं छोड़ देना, फिर से देह में आना, फिर से चेतना को घुमाना, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें हैं। मुख्य रूप से 3 बातें, शरीर को शिथिल कर देना, शवासन में जैसे सोते हैं वैसे सोना, चेतना को शरीर में घुमाना, श्वासों के तरफ ध्यान देना और विजुअलाइजेशन करना, क्योंकि सोते समय जो संकल्प किए जाएंगे सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। वहां संकल्प करना कि मुझे अमृत वेले उठना है, इतने बजे। कितने बजे उठना है? 3 बजे। और कितने बजे उठना है? 3:30। और कितना? 3:45। और 3:20। और 4:02। और हर एक को अपना टाइम सेट करना है, मिनिमम 3:30। ऑफिशियल टाइमिंग जो है 3:30 है। और अगर हो सके तो स्नान करना, ब्रश करना, चेतना जागृत हो जाए। नींद आती है तो टहलना। सब कुछ करने के बाद भी नींद आती है तो अव्यक्त बाप दादा का वीडियो है वो देखना, या अव्यक्त मुरली पढ़ना और फिर योग करना, या फिर केवल चलते फिरते योग करना, परंतु सोना नहीं है किसी भी हालत में। ये सबसे पहला। दूसरा, दंड संहिता, ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना। और ब्रह्मचर्य एक बहुत सूक्ष्म और दीर्घकालीन यात्रा है, इसमें कम ज्यादा अप डाउन बहुत सारे हैं। स्टडी करना, अपने अनुभव से सीखना, दूसरों के अनुभव से सीखना, स्वयं को बार बार स्थिर करना और फिर चलने लगना। कंप्लीट प्यूरिटी, क्योंकि जब जब ब्रह्मचर्य खंडित होगा दंड क्या मिलेगा? क्या दंड मिलेगा? बुद्धि भटकेगी, एकाग्रता नष्ट होगी, सिरदर्द, शारीरिक व्याधि, बेचैनी, एडिक्शन प्रगाढ़ होगा, स्मृतियां गहरी होगी, स्मृतियां बार बार सताएगी। जो पुरुषार्थ करने नहीं देगी, और देह के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और देह याद आएगा, और देह सुंदर लगेगा, जबकि उसमें है क्या? कुछ भी नहीं। तो अभी हम एक योग का प्रयोग करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, उसमें 6-7 बातें हैं जो करनी है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, इसके ये अभ्यास है। पहले देखना है कि शरीर मृत हो गया है, जैसे मर चुका है, थोड़े से खतरनाक अभ्यास है, डरना नहीं कि शरीर मर चुका है और मैं आत्मा ऊपर निकल गई। दूसरा, तत्व तत्वों में समा चुके हैं, मैं ऊपर तत्व तत्वों में विलीन हो गए। तीसरा, यह शरीर पतित है, तमोप्रधान है। चौथा अभ्यास, आग लग गई है। क्या हो गया है? बॉडी इज ऑन फायर, शरीर को आग लग गई है, भस्म हो रहा है। फिर देखना है, जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है। फिर देखना है, ये सारे शरीर 84 जन्मों के, उसमें से द्वापर कलयुग के शरीर व्याधिग्रस्त है। फिर देखना है, इस शरीर में अंदर भरा क्या है? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, मलमूत्र से भरा यह देह। तो सभी तैयार? मिट्टी की बनी इस देह में, इस मृणमय शरीर में मैं चिन्मय आत्मा। दिखाई दे रहा है मिट्टी का बना यह शरीर, शरीर बन रहे और टूट रहे हैं, जैसे कि कोई खिलौना। परंतु मैं आत्मा इससे पृथक हूं। ऊपर आकाश में चैतन्य सितारे, नीचे अपने ही देह को देख रहा। और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, ये शरीर मृत हो चुका है, मुर्दा, निश्चेष्ट पड़ा हुआ। सारी चेतना समाप्त हो गई शरीर से, अपने ही मृत देह को देख रहा है, जमीन पर पड़ा हुआ। और शरीर के समाप्त होते ही जिसकी सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, आकर्षण, भोग, संबंध, धर्म, भाषा, स्थान, संस्कार, सब कुछ समाप्त, अब एक तीसरा दृश्य पुराना शरीर तमोप्रधान शरीर झूठा शरीर इस देह से मैं अनासक्त हूं। अगला दृश्य, शरीर के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्वों में विलीन हो रहे। बच गई केवल मैं आत्मा। अगला दृश्य क्या है इस शरीर में भरा हुआ, जन जन की गंदगी, विरक्त आत्मा में अनासक्त भाव से साक्षी होकर आर पार देख रही है। अगला दृश्य भंभोर को आग लगी, शरीर भी जल रहा है। परंतु मैं आत्मा नैनम दहति पावक अविनाशी, शरीर से अलग, अपने शरीर को दूर से देख रहे हैं। यात देही यात जन्मी, इसी देह में और इसी जन्म में शरीर से अलग हो जाए, शरीर की मृत्यु का समारोह देख लेना, सेलिब्रेशन ऑफ डेथ। जिसने देख लिया वो मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। तो सभी अभ्यास करेंगे, कौन सा अभ्यास, कि शरीर मर चुका है, अर्थी उठ रही है, लोग कह रहे हैं अच्छा ही हुआ गया, पहले भी बहुत बोझा था, कोई सोच रहे हैं अच्छा हो गया, अब हमको हमारा रास्ता साफ हो गया, अब इसकी पोस्ट हमें मिल जाएगी। कोई सोच रहा है कब ये पूरा होगा, और आज तो हलवा बना होगा भोग, ऊपर से दुखी है और अंदर से खुश है, और हमने सोचा था ये मेरे अपने हैं। सुरन रमुनी सबकी हरीति, स्वार्थ हित सब करही प्रीति, स्वार्थ हित सबकी प्रीत है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म स्थिति में स्थित होना, ब्राह्मी स्थिति में स्थित होना, देह के आकर्षण से संपूर्ण मुक्ति का नाम है ब्रह्मचर्य। और जब ये टूटेगा तो बेचैनी होगी, शरीर से आकर्षण होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, ये दूसरा। तीसरा दंड सही था, सेंटर एटमॉस्फेयर। हम ए से लेकर जेड तक चालू करेंगे, ए अमृत वेला, बी ब्रह्मचर्य, सी सेंटर का वातावरण। यदि हम सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली नहीं बनाते और सेंटर के वातावरण को दूषित करते हैं अपने दूषित विचारों से, भटकती बुद्धि से, उसका भी दंड मिलेगा। क्योंकि ये वायुमंडल, ये यज्ञ किसका है, वो स्थान कौन सा है, यदि हमारे कारण, हमारी किसी चलन को देखकर कोई एक व्यक्ति ज्ञान छोड़कर चला जाता है तो बोझ बहुत ज्यादा है। किसी सेवा केंद्र पर एक नया भाई गया कोर्स करने के लिए, तो वहां देखा क्लास पूरा हो गया था और दो माताएं झगड़ा कर रही थी सेवा केंद्र में ही। मुरली के बाद भाई जी का कोर्स वहीं पूरा हो गया और वो लौट के चला गया। सेवा केंद्र का वायुमंडल निर्विघ्न बनाना है। सेवा केंद्र को शक्तिशाली बनाना है, सेवा केंद्र में योग का वायुमंडल निर्माण करना है, अति वाचाल बनकर यहां वहां की चर्चा कर वहां के वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करना है। आप सबको एक टॉपिक दे रहे हैं हम चिंतन करने के लिए, जिस पर सभी चिंतन करना, निर्मल मन का प्रदूषण। लिख के रखो ये टॉपिक, जो लिख सके हैं लिख सकते हैं, बाद में इसके इस टॉपिक पर लिखना या चर्चा करना। जो निर्मल मन है, जो ब्राह्मण मन है, उसके कौन से सूक्ष्म प्रदूषण पोल्यूशन होते हैं, उसकी चर्चा करना। तो सेवा केंद्र का वायुमंडल शक्तिशाली न बनाकर कमजोर हमने बनाया, उसका भी दंड मिलेगा, हमारी स्थिति ही कमजोर हो जाएगी, आत्माओं की बद्दुआएं मिलेगी सूक्ष्म, जो आने वाले हैं उनकी। उसके बाद है डी, ड्रेस कोड। सुबह 6 बातें बताई थी ड्रेस की, वो न कर यदि हमें देखकर कोई दूसरा आकर्षित होता है हमारी गलती के वजह से, उसका भी दंड है। किसी दूसरे ब्रह्मचारी आत्मा के अंदर विकार उत्पन्न करने के निमित्त बनना, दंड का भागी बनना है। किसी तपस्वी का ब्रह्मचर्य गिराना, दंड के भागी बनना है। किसी तपस्विनी का ब्रह्मचर्य गिराना, दंड के भागी बनना है। एक दूसरों के प्रति संपूर्ण और सर्वोच्च रिस्पेक्ट यदि है तो वो प्यूरिटी का है, और उसके लिए जो भी करना है किया जाए। अल्पकाल का एक दूसरों को दुख भी देना पड़े तो दिया जाए। परंतु डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ड्रेस कैसा हो, शालीन, दिव्य, हमें देखकर दूसरों के अंदर पवित्र भावनाएं उत्पन्न हो। अगर वो हम नहीं करते हैं तो कुछ और होगा। उसके बाद है ई, एक्सचेंज ऑफ मनी एट सेंटर, सेवा केंद्र पर लौकिक व्यवहार, पैसों की लेन देन, बिजनेस की बातें, बिजनेस की चर्चा, पॉलिटिक्स की चर्चा, क्रिकेट खेल, सीरियल, गेम्स, संसार की सारी चर्चा करना। एक भाई ने हमको सुनाया था, हमें कुछ युक्ति बताओ, क्योंकि हमारे सेवा केंद्र पर जैसे ही मुरली पूरी होती है 3-4 भाई ऐसे हैं कि बैठकर पॉलिटिक्स की चर्चा चालू कर देते हैं, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, रोज नियम अनुसार। अभी मुरली सुनी, मुरली पूरी हुई कि बैठकर चर्चाएं चालू। लौकिकता फैलाना, दंड मिलेगा जीवन में, लौकिकता आएगी स्वतः, रूहानियत से नीचे गिरेंगे। उसके बाद है एफ, अर्थात फूड। ये सारे नियम हैं जो आपको याद रखने हैं, सबके सब A to Z तक, और दूसरों को भी सुनाने हैं, और खुद भी बीच बीच में रिवाइज करने हैं, दूसरों को सुनाने के लिए कम, स्वयं की धारणा पक्की करने के लिए ज्यादा। रेलवे स्टेशन पर है, एयरपोर्ट पर है, मार्केट में है, घर से दूर है, और बहुत भूख लगी है तो क्या करेंगे, सेवा केंद्र है नहीं, अब बताओ, फल, हाँ ये अच्छा है, पर फल तो खाने की तो इच्छा ही नहीं होती है, फल से तो पेट ही नहीं भरता, फल तो बचपन से पसंद नहीं है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या पोहा, पर है ही नहीं, वो तो भगवान को दे दिए सुदामा की पोहे, अभी रहे ही नहीं साथ में, तो क्या करेंगे, हाँ कोकोनट नहीं मिला तो क्या करेंगे, दूध, अच्छा पानी, और क्या करेंगे, या देखेंगे थोड़ा सा कुछ किसी दुकान में कुछ दिखता है और आसपास नजर घुमाएंगे कोई ब्राह्मण तो नहीं है, चुपचाप ले लो और खा लो और दृष्टि दे दो पावरफुल, और बाबा ने कहा है दृष्टि देकर खाओ, क्या करेंगे, नहीं खाएंगे, कौन सा अन्न हम खा रहे हैं, उसका सूक्ष्म प्रभाव है मन पर, सुबह बताई थी ना बात बिस्किट वाली, बहुत भारी पड़ गया बिस्किट, सब चला गया, बाहर का आइसक्रीम कौन कौन खाते हैं जरा हाथ खड़ा करना, कैसे बनता है वो, मशीन से बनता है ना, मशीन अपने आप चलती है क्या, कि कोई चलाता है, एक बार गंगे दादी थे यूपी से, उन्होंने कोई ऐसा शायद निर्णय लिया था और फिर बाबा को नहीं बताया था, छोटी सी बात थी कोई, और बाबा ने कहा था, फिर बाबा को पता चला, बाबा ने कहा था पता नहीं किस पतित के हाथ का खाना खा दिया था उस दिन, जिसके हाथ का खाना खाएंगे उसी के विचार अंदर समाएंगे, क्या हम खा रहे हैं, कोई ब्राह्मण बना रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बाबा की याद में ही बना रहा है, हो सकता है माता अपने बच्चे की याद में बना रही है और उसके आंसू बह रहे हैं और वो आंसू उस आटे में भी मिक्स हो रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये ब्रह्मा भोजन इतना टेस्टी क्योंकि उसमें आंसुओं का नमक भी है, अचानक सेवा करते करते लौकिक किसी की याद आ गई और आंसू बहने लगे, परहेज धारणाएं भोजन की, तीन चार बातें हैं, भोजन किस पैसे से आ रहा है, एक नंबर, दो नंबर किसी का शोषण करके आ रहा है, दूसरा भोजन बनाते समय कौन से संकल्पों के साथ बनाया जा रहा है, तीसरा भोजन अपने आप में कैसा है, कंकड़ पत्थर जाति दोष तामसिक राजसिक, चौथा खाने वाला किसकी याद में खा रहा है, और भोग लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, इस सभा में ऐसी कितनी माता है जो रोज 24 घंटे में एक बार भोग लगाती है, एक बार, और बाकी माताएं नहीं लगाती, भाई को अभी पूछेंगे, पहले रुको, पहले माताएं, भगवान को भूखा ही रख देते हैं, 24 घंटे में एक बार जो भी माताएं भोजन बनाती है उनको भोग लगाना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्त्या प्रेष्यति, हे अर्जुन जो अनन्य भाव से मुझे पत्र पुष्प और फल, मैं 56 भोग नहीं चाहता, पत्र पुष्प और या फल कुछ भी चढ़ाए वो मैं अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं, भाई में से कितने हैं जो रोज स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे कितने हैं जो भोजन बनाते नहीं परंतु भोग लगाते हैं, ऐसे कितने हैं जो ना तो भोजन बनाते और ना ही भोजन भोग लगाते, सीधा टूट पड़ते हैं कहीं खत्म ना हो जाए इतना टेस्टी भोजन, कब मिलेगा? प्रेम से परमात्मा को स्वीकार कराना प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो भोजन, और यदि यहां वहां का खा लिया, पतित के हाथ का खा लिया, दंड मिलेगा विकारी संकल्प, दंड मिलेगा अशुद्ध भावनाएं, दंड मिलेगा बेचैनी हलचल, अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस, एकाग्रता भंग। उसके बाद में जी, जी अर्थात गिविंग गुड विशेस, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना और सुख देना, ये नियम है। ये न करते हुए हम किसी को बद्दुआएं देते हैं, दुख देते हैं, शुभ भावना की जगह अशुभ भावना रखते हैं, ये सोचते हैं इसने हमारे साथ ऐसा किया इसका भी ऐसा हो जाए, ये सोचना दंड के भागी बनना है। अशुभ भावनाएं रखना, दुख देना। सुबह क्या था मुरली में, तुम्हें कौन बनना है, वरदानी महादानी? और हमारे द्वारा दिया गया शाप सिद्ध भी होता है क्योंकि हम श्रेष्ठ ब्राह्मणात्माएं हैं, परंतु दुर्वासा नहीं बनना है, वो हमारा यादगार है। जो तपस्वी भी है, जो ब्राह्मण भी है, जो योगी भी है, परंतु क्रोध भी बहुत है। किसी भी समय जल निकाला और शापित कर दिया, किसी दूसरे आत्मा के प्रति पर चिंतन, पर निंदा करना, अर्थात उसे शापित करना, उसे ये कहना ये तो है ही ऐसा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसने हमारे मेरे जीवन में इतनी बाधा उत्पन्न की, उसके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब बीमार है बहुत अच्छा। हम किसी को दंडित ना करें, किसी को शापित ना करें, क्योंकि शाप देने के बाद जो भी ऋषि मुनि थे उनकी अपनी तपस्या कम हो जाती थी, भंग हो जाती थी उस क्रोध के क्षण में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जगह लिखा है कि यदि कोई एक घंटा क्रोध करता है तो 60 मिनट के लिए अपनी शांति को गवा देता है, कोई अगर एक मिनट क्रोध करता है तो 60 सेकंड के लिए अपनी शांति को गवा देता है। तो चाहे जिसने कुछ भी किया हो, हर एक के लिए शुभ भाव, शुभ कामना, दुख नहीं देना है किसी को। हमारा यादगार गणेश है, सुख करता। उसके बाद में एच फॉर होली कंपनी, सत्संग। ब्राह्मणों का संग छोड़कर लौकिक में अपने दोस्त बना लेना और उनके साथ उनके जैसा व्यवहार करना, जब उधर रहो, और जब इधर रहो तो ब्राह्मणों जैसा व्यवहार, उधर जाओ तो उनके साथ सिनेमा जाना, उनके साथ पार्टी में जाना, उनके साथ घूमना फिरना, उधर जाने के बाद उधर का व्यवहार, इधर आने के बाद इधर का व्यवहार, इधर भी तोड़ निभा रहे। उस कुसंग का रंग लगेगा और फिर इधर धारणाएं मुश्किल हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की दंड संहिता में ये भी एक दंड होगा, कुसंग डुबोएगा आत्मा की नाव को। ऐसे लिस्ट बनानी है, ऐसे कौन लोग हैं या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो ज्ञान की दृष्टि से कुसंग है, और उससे स्वयं को मुक्त करना है। कुसंग से। और निरंतर सत्य के संग में रहना, सत्य बाप के संग में रहना, और निरंतर ब्राह्मणों के संग में रहना। ये जो ब्राह्मणों का संघ है एक किला है, ये जो ब्राह्मणों का संगठन है एक किला है। संगठन के अंदर रहना, संगठन के बाहर जाते ही माया आक्रमण करेगी। इस संगठन में पाप नहीं हो सकता, इसके बाहर जाओ और विकर्म चालू। इसके लिए जब इस तरह के मौके हो, सत्संग हो, भटिया हो, प्रोग्राम हो, उसमें केवल आकर भी बैठ जाना, सुनो या ना सुनो, स्थिति ऊपर चली जाएगी। क्योंकि इतनी सारी आत्माओं के प्रकंपन इस हवाओं में है, और ऐसी सभा में असंभव है कि कोई विकार की चर्चा करे, मन में भी संकल्प लाए। तो मन स्वतः ही शुद्ध होगा, पवित्र होगा। उसके बाद में आए इनकल्केट वर्च्यूज, अर्थात दिव्य गुणों को धारण करना, और जो ये प्रयत्न नहीं करता वो भी दंड का भागी बनता है, अवगुणों को धारण करने लगता है। अवगुण जीवन में आने लगते हैं, जो क्रोध था नहीं अब आने लगा, जो काम विकार का पता नहीं था अब स्वतः ही प्रकट हो गया अचानक, लोभ क्या है पता नहीं था अब नए रूप से लोभ आ गया, तो दंड मिलेगा अगर दिव्य गुणों को धारण नहीं करना। एक दूसरा काम आपको दे रहे हैं, 36 दिव्य गुणों की लिस्ट है, जो लिख सकते हैं और जो सोच सकते हैं, एक दिव्य गुण रोज लेना और सारे दिन भर उसके ऊपर विचार करना, और ये सोचना मैं इसे कैसे धारण करूं। एग्जाम्पल डिसिप्लिन, अनुशासन, मैं अपने जीवन को कैसे अनुशासित करूं। फॉर एग्जाम्पल साइलेंस, कैसे जीवन में साइलेंस लाऊं, स्वीटनेस कहां से मधुरता लाऊं। ये सारे दिव्य गुणों की धारणा अगर नहीं होगी तो दंड के अधिकारी होंगे। उसके बाद में जे, अर्थात जर्नी टू मधुबन। कई ब्राह्मण आत्माएं सेंटर के द्वारा न जाकर सीधा जाते हैं मधुबन। यज्ञ का एक नियम है सेवा केंद्र के द्वारा जाए, पर वहां से न जाकर सीधा अपनी जान पहचान के आधार पर जाते हैं। अनुभव भी नहीं होगा, पहुंच तो जाएंगे, बाबा से मिलन भी होगा पर अनुभव नहीं होगा। इसके लिए यज्ञ का नियम है और उसी नियम से चलना है। उसके बाद है कि कीपिंग चार्ट, चार्ट रखना। यज्ञ में दो चीजें हैं ब्राह्मण जीवन में, एक चार्ट, दूसरा रजिस्टर। ये दो शब्द है, चार्ट खुद की चेकिंग का, रजिस्टर हिसाब किताब, लेखा जोखा, चौपड़ी। हमारे रजिस्टर में सारे अकाउंट्स क्लियर होते जाए हर दिन, नए अकाउंट्स, नए फ्रेश बॉन्डेजेस उसमें ना हो। रजिस्टर की तरफ ध्यान रखना है, और रजिस्टर बेदाग रहे, और चार्ट रोज चार्ट लिखना, और नया नया चार्ट लिखना। मुरली से ही चार्ट बना लेना, रोज की मुरली से चार्ट, जैसे आज की मुरली सुबह, मुरली सुनते सुनते ही 5 प्रश्न लिख लेना चार्ट के रूप में। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, मैं कितना बना हूं, स्मृति स्वरूप की रियलिटी, सर्व प्राप्तियों की रॉयल्टी, दाता रहम दिल संतुष्ट मनी। हर दिन एक नया चार्ट, सुबह चार्ट बना लेना, रात में सोते समय उसको भरना। हर दिन का नया चार्ट, एक ही चार्ट रोज नहीं चलाना है, नया नया चार्ट मुरली के आधार पर। तो चार्ट रखना। उसके बाद है एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्रेम, और उस एक को छोड़कर बहुत सारे देहधारियों के प्रेम में फंस गए तो क्या होगा, क्या होगा? बाइबल में एक जगह लिखा है आई थाय गॉड थाय लॉर्ड आई एम जेलस गॉड, मैं ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मुझे छोड़कर अगर किसी के साथ गए तो देख लेना, छोड़ूंगा नहीं, केवल मुझसे प्यार करो, लव मी बियॉन्ड एवरीथिंग। एक अव्यक्त वाणी है, मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसी एक मुरली है, उसका हेडिंग ही ये है। जब बाप देखते हैं कि बच्चे किसी और का हाथ पकड़कर जा रहे हैं तो बाप के मन में हलचल होती है। वो मिया है, उसको हलचल होती है। तो एक से प्यार, एक के प्रति समर्पण, एक से लगाव, एक से आकर्षण, एक से सर्व संबंध, एक को मन में बसाना, एक की याद, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा मैं तीसरा ना कोई, अगर तीसरा कोई बीच में आया तो तीसरी आंख बंद। देहधारियों से प्यार करने में क्या नुकसान है? सुबह राजकुमार की कहानी सुनी ना, बेचैनी, उदासी, कुछ अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उदास उदास। उसके बाद है एम अर्थात मुरली, नियमित मुरली क्लास जाना, पॉइंट्स नोट करना, और नोट करने के बाद सारे दिन भर उनका चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, रात में चर्चा करना मुरली की। हो सके तो दो लोगों का एक ग्रुप बनाना है जो घर में ही रहते हैं, और रात को सोने से पहले, चाहे वो माताएं हैं या कोई भाई है, कुमार है, साथ रहते हैं, मुरली की चर्चा जरूर करनी है, नहीं तो बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं होती है। अगर ये ना करो, दंड है व्यर्थ सारे दिन भर। व्यर्थ विचार, निगेटिव विचार तूफान मचाते हैं। उसके बाद है एन, दंड संहिता में एन अर्थात नो, नो टू बहुत बड़ी लिस्ट है, और सबसे पहला है सिनेमा, मूवीज। वो सारी चीजें जिसके लिए बाबा ने मना किया है वो सारी नो में आएगी। उसकी लिस्ट आप स्वयं बनानी है कि बाबा ने किन किन चीजों के लिए नो कहा है, ना मतलब ना। हर एक ये प्रश्न अपनी डायरी में लिख के रखो कि बाबा ने किन किन बातों के लिए नहीं कहा है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो अर्थात नो विथ कैपिटल एन। उसके बाद ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, जो भी श्रीमत मिली है, शिक्षाएं मिली है, उनका पालन करना। वो नहीं करेंगे तो दंड के भागी बनेंगे, एक एक चीज से दंड, और वो दंड कोई दूसरा नहीं देगा, और वो दंड अदृश्य होगा, और वो दंड स्वयं ही अनुभव होगा। उदासी का जीवन में छा जाना सबसे बड़ा दंड है ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण परिवार से नफरत हो जाना दंड है, लौकिक संसार अच्छा लगना दंड है, संसार के साधनों में आकर्षण ज्यादा हो जाना दंड है, फिर उसके बाद में पी, पी से यज्ञ में एक नियम है प्रिंटिंग लिटरेचर, निमित्त बहन से बिना पूछे लिटरेचर प्रिंट करना, पर्चा बनाना अपनी मर्जी से, किताबें पब्लिश करना, ये नॉट अलाउड है। जो निमित्त बहन है उससे पूछ कर ही हो, विशेष रूप से भाइयों के लिए। इसमें केवल प्रिंटिंग लिटरेचर ही नहीं है, और भी बहुत सारे निर्णय हैं। प्रोग्राम यहां करना है या वहां करना है, यह ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ये सारी बातें उसमें आएगी। और ये जब नहीं किए जाते हैं तो हम ये भूल रहे हैं कि भगवान ने निमित्त पुरुष को नहीं स्त्री बहन को बनाया है। तो विघ्न आएंगे सेवाओं में, अपने अहंकार को नीचे करना है। उसके बाद है क्यू, क्यू से एक शब्द है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। जो भी सेवा की जाए क्वालिटी वाली हो, ऊपर ऊपर से काम चलाऊ नहीं। जैसे रमेश भाई जी ने एक बार उदाहरण दिया था, एक माता थी, उसके घर से फोन आ गया और उसे जाना था, और इधर एक पार्टी थी जिसको वो प्रदर्शनी समझा रही थी। फोन आ गया तो उसने फटाफट एक मिनट में पूरी प्रदर्शनी समझा दी, ये है, ये है, ये है, ये है, बस, और चली गई। इससे तो अच्छा किसी और को दे दो वो सेवा। जो भी सेवा की जाए क्वालिटी वाली सेवा हो, ऊपर ऊपर की ना हो, काम चलाऊ ना हो, दिखावे वाली ना हो। सेवा सेवा केंद्र पर जा रहे, झाड़ू पोछा भी जो हो वो मन से, दिल से, आनंद से, खुशी से, भोजन बनाने की सेवा हो या कोई भी सेवा हो, पूर्ण मन से सहृदय सेवा की जाए, आनंद पूर्ण प्रसन्नता से की जाए। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सूक्ष्म दंड मिलता है, स्वयं की ही खुशी गायब हो जाना। उसके बाद है आर, अर्थात रिलेशनशिप। ब्राह्मणों के आपस में संबंध कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, भाई भाई की दृष्टि, और क्या होना चाहिए, बाबा कहते हैं रिस्पेक्ट देने का, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड रखो। कौन सा रिकॉर्ड रखना है, रिगार्ड देने का। छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए क्या हो, रिगार्ड। ऐसा नहीं कि ये तो बहुत छोटी सी कन्या है, हम तो बहुत पुराने हैं। वो कन्या है छोटी, पर हमें क्या पता वो पिछले जन्म में कौन सी तपस्या करके आई है, और हो सकता है इसी यज्ञ की कोई आत्मा आई है। और ऐसा भी हो सकता है उसमें वो अवगुण है ही नहीं जो हमारे जीवन में हमें पिछले 10-15 साल से परेशान कर रहा है, वो उस अवगुण की अविद्या है उसमें। कोई ऐसा दिव्य गुण है, कोई ऐसी प्रतिभा है जो हम में है ही नहीं, तो किसी के भी मार्ग में बाधा नहीं बनना है। कोई छोटा भी हो तो सबको जाने दो आगे। कैसे नहीं होने चाहिए ब्राह्मणों के संबंध, कैसे नहीं होने चाहिए, झगड़े वाले नहीं होने चाहिए, और ईर्ष्या वाले नहीं होने चाहिए, और कैसे नहीं होने चाहिए, अटैचमेंट वाले नहीं होने चाहिए। आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, एक है अटैचमेंट वाला संबंध, दूसरा है झगड़े वाला, कौन सा लोगे? नहीं नहीं लेना एक, झगड़े वाला लेने। दादी जानकी के पास विदेश की कभी दो बहनें आई थी, और बहनों ने बताया कि ये जो है दो बहनें हैं कहीं, दो सेंटर आपस में लड़ते रहते हैं, کیا کیا جائے, بہت جھگڑا ہے دو بہنوں کے بیچ. تو دادی نے کہا ٹھیک ہے چلے گا, اٹیچمنٹ تو نہیں ہے نا, پریفرنس کس کا ہے, جھگڑا یا اٹیچمنٹ؟ اٹیچمنٹ میں بہت دکھ ہے, جھگڑا پھر بھی ٹھیک ہے. ویسے تو دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے, پر اگر دونوں میں سے چننا ہے تو کس کو چنو گے؟ من مٹاؤ ٹھیک ہے, پر اٹیچمنٹ بے چینی, وہ فون نہ اٹھائے تو ادھر بے چینی, میسج کیا کوئی ریپلائی نہیں بے چینی, ہم جہاں جائے وہ وہاں رہنا چاہیے. اٹیچمنٹ بھینکر ہے سمبندھوں میں, ہم جہاں جائیں گے ساتھ میں چلنا چاہیے, ہم مدھوبن جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں چلنا چاہیے. جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم بھوجن کے لیے نہیں جائیں گے. پیار ہی ایسا ہے روحانی, وہ دو بہنوں کا بھی ہو سکتا ہے, دو ماتاؤں کا بھی ہو سکتا ہے, دو بھائیوں کا ہو سکتا ہے, اور یدی وہ بھائی اور بہن کا ہو گیا تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. آکاش سے پانی جو گرتا ہے بہت اچھا ہے, نیچے جو زمین ہے وہ بھی بہت اچھی ہے, پرنتو وہ پانی جب زمین پر گرتا ہے تو کیچڑ بنتا ہے. سمبندھوں میں اناسکتی ڈیٹیچمنٹ, سمبندھوں میں سمان, سمبندھوں میں گیان کی تلوار ہو بیچ میں, کیونکہ جب گیان کی تلوار ہٹ جائے گی تو کام کی تلوار چلے گی. سمبندھوں میں مدھرتا مٹھاس, سمبندھوں میں من مٹاو نہیں. اٹیچمنٹ ہوگا تو بہت سارے دنڈ ہے, جھگڑے ہوں گے اس کے بھی دنڈ ہے بہت سارے, دونوں ہی چیزیں. پیارے بننے کی ودھی ہے نیارا بننا, کسی کا پیارا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, ڈیٹیچ ہو جاؤ, اپنے آپ پیارا بنیں گے. پیارے بننے کی ودھی یہ نہیں ہے کہ ایک ایک کو جا جا کے خوش کروں, ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے خوش کروں. اس کے بعد ہے ایس سائلنس اینڈ سالیٹیوڈ, مون اور ایکانت. سارے دن بھر یدی واچا میں رہیں گے بول بول ویرتھ کی باتیں, اور سارے دن بھر کیول بھیڑ کے آس پار ارد گرد رہیں گے تو چنتن نہیں ہو پائے گا. مہان چنتن مہان مون اور مہان ایکانت میں ہوتا ہے. یوگی کا شرنگار ہے مون اور ایکانت, اور جب نہیں ہوگا تو کیول آواز شورگل, وہ دنڈ ہوگا بے چینی. اس کے بعد ہے ٹی ٹرسٹی شپ, یہ سمجھنا میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اس کا ہے, سب کچھ اس کے لیے. ایک گھر ہم نے دیکھا تھا, وہاں پر جو بھی چیزیں وہ ماتا لاتی تھی سب کچھ شیو بابا کے ٹرانسلیٹ کے سامنے ارپن, سبزی لائے سب سے پہلے وہاں رکھو, کرانہ لایا سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کے آگے رکھو, پھر لینا جو بھی لائے چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے ادھر ارپن اور پھر ہم لیں گے. ان کے یوگل سیلری آئی, سیلری پہلے بابا کے ٹرانسلیٹ کے آگے, پھر بابا سے ہم لیں گے. اب یہ ہماری یگیہ سے پالنا ہو رہی ہے, ہم سوئم کی پالنا نہیں کر رہے, بھگوان ہماری پالنا کر رہا ہے. یہ وستر یگیہ کے ہے, یہ گھر بابا کا ہے, یہ گاڑی بابا کی ہے, سب کچھ بابا کا ہے. بھاشا ہی پریورتن, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جب نہیں رہے گا پوزیسیو رہیں گے, یہ میرا ہے, تو میرا جب چھوٹے گا تو دکھ ہوگا اور دنڈ ملے گا. इसके लिए मेरा कुछ भी नहीं है, संभालने के लिए दिए गए हैं। ये जो बच्चे घर में आए हैं ये भी मेरे नहीं है। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। ऐसी एक कविता है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं तुमसे आए हैं पर तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो अपना भाग्य लेकर आए हैं। इसके लिए अपनी इच्छाएं और अपनी आकांक्षाएं उन पर लादनी नहीं है, थोपनी नहीं है। उनको जो बनना है वो बनेंगे, हमें केवल उनकी पालना करनी है, संस्कार भरने हैं बस, बाकी उनका भाग्य। यदि ये समझो ये मेरे हैं तो फिर दुख है, परंतु इसमें माया बहुत है। हमारे पास एक कुमार थे पहले, बहुत पक्के कुमार, और फिर चतुर्भुज बन गए। बाबा ने कहा था चतुर्भुज बनो सतयुग में, वो यहीं बन गए और फिर बच्चे भी हो गए, और अब कहते हैं ये बच्चे भी शिव बाबा के हैं, और ना मुरली ना ज्ञान योग ना कुछ, पर ये बच्चे भी बाबा के ही है। ऐसा कर दे, हम तो ट्रस्टी है, ज्ञान के सारे शब्द पता है और अच्छे से प्रयोग करते हैं शब्दों का, पर धारणा जीरो। ट्रस्टी भाव अपने अंदर लाना है। ट्रस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यासी, न्यासी। संन्यास शब्द कहां से आया है? संन्यासी, न्यासी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ट्रस्टी अर्थात न्यासी, न्यासी अर्थात सब कुछ अर्पण किया हुआ है। न्यास यू, अगली धारणा या दंड यू। यू अर्थात यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस टाइम इन वर्थवाइल मैनर, अर्थात समय साधन का समुचित उपयोग करना। समय को जो नष्ट करेगा, समय एक दिन उसको नष्ट कर देगा। यज्ञ के साधन जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, उन सब की बचत करना। भोजन, हम देखते हैं मधुबन में पार्टियां आती है, इतनी थाली भर लेते हैं माताएं भाई, और थोड़ा सा खाते हैं और सब फेंक देते हैं, चाय ग्लास भर भर देते हैं, आधी पीते हैं और कहीं पर भी रख देते हैं। कितना भोजन वेस्ट करते हैं मधुबन में जाकर, ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं खत्म हो जाएगा, भरो सारा थाली में और फिर कुछ नहीं खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और छोड़ देते हैं। यज्ञ का भोजन एक एक दाना मुहर के समान है, बाबा के महावाक्य है। जो चीज नई बनी है और हमने कभी खाई नहीं है, थोड़ा सा लो और थोड़ा ही लो, जरूरत पड़ी तो वापस देना, पर इतनी थाली भर देना और फिर सब कुछ वेस्ट कर देना। यज्ञ के भोजन की कदर करना। आज किस किस ने भोजन वेस्ट नहीं किया? मतलब जो हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं उन्होंने किया, मतलब सुनाई आ रहा है? हाँ आ रहा है, चालू है, वाह। तो भोजन वेस्ट ना हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, सेवा केंद्र पर जाओ पैन चालू छोड़ दिया और चले गए। अपने घर में ऐसा करते हो क्या कभी? मधुबन में गए तो ऐसे जीते हैं पता नहीं कहां आए, कमरे का पैन चालू है, लाइट चालू है, पानी बह रहा है, पानी बहुत है, इसका मतलब ये नहीं आठ आठ बकेट भर पानी से नहाते ही बैठो, घिसते रहो शरीर को, ये कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा गोरा नहीं बनेगा। आत्मा ही तमो प्रधान है, शरीर का क्या होगा। तो कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं करना है। पेट्रोल, गाड़ी, जहां पैदल जा सके वहां पैदल। ये मत समझना ये हमने कमाए हुए पैसे, ये हमारे पैसे, यही सोचो ये घर, ये लौकिक घर बाबा का ही है, सब कुछ उसकी है, पैसे जो आ रहे हैं उसके हैं। ऐसी चीजें खरीद के रखना कीमती कीमती जिसका कभी कोई उपयोग नहीं किया, व्यर्थ है। यज्ञ में बेगरी पार्ट था कभी, कम से कम साधन जो थे वो भी खत्म हो गए थे, और उसी अवस्था में सबसे अधिक साधनाएं भी चली। तो वेस्ट नहीं करना, नहीं तो समय हमें वेस्ट कर देगा, समाप्त कर देगा, दंड मिलेगा। यज्ञ की चीजों का अनुचित उपयोग किया, स्वयं की सुख सुविधाओं के लिए उपयोग किया, ऐसा खान पान कर रहे हैं और फिर बीमारी, और फिर बीमारी के लिए पैसा और इलाज, कहां से आ रहा है वो। तो दंड है उसका भी। उसके बाद में वी, विजिटिंग अदर सेंटर। एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र में जाते समय एक लेटर चाहिए, ये यज्ञ का नियम है। हम दंड संहिता गिना रहे हैं, साथ में मर्यादाएं भी गिना रहे हैं, 26 मर्यादाएं टोटल यज्ञ की। एक सेवा केंद्र से दूसरा सेवा केंद्र में जाते हुए पत्र होना चाहिए। ये समझना कि मुझे तो वो जानते हैं, मेरी तो बहुत पहचान है, ये यज्ञ के नियम नहीं। और जब भी नियम तोड़ेंगे सूक्ष्म कुछ ना कुछ होगा। डब्लू तो सबको पता ही है, वॉश आफ्टर बॉवल मूवमेंट, पेट साफ होने के बाद स्नान करना, ये शारीरिक स्वच्छता के लिए भी आवश्यक है। बीमारियां बहुत बढ़ रही है संसार में, इसके लिए ये धारणा इस यज्ञ की है। एक्सरे दो बार, एक्सरे अर्थात सूक्ष्म जांच करनी अपनी आपकी। जैसे एक्सरे में सब कुछ दिखता है, एक्सरे करना है सोल का, आत्मा का। सुबह एक बार चेकिंग अमृत वेले के बाद और रात को सोने से पहले, एक्सरे ट्वाइस अ डे। अगर नहीं करो तो एक ही गलती बार बार रिपीट होती रहेगी और दंड मिलेगा। उसके बाद है वाय, वाय अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, एक अमृत वेला योग और एक नुमा शाम का योग। नुमा शाम का योग कौन है जो रेगुलर करते हैं? नुमा शाम का 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30 बहुत लोग हैं। बहुत अच्छा, भाइयों की संख्या कम है, पर भाइयों को जॉब है, ड्यूटी है, ट्रेवल है, ट्रैफिक में है, कहीं पर भी है, वहां पर ही जैसे ही 6:30 या 7 बज जाते हैं, सब तरफ से अपने आप को मन से डिटैच कर योग शिव बाबा से लगाना। कहीं पर भी, ऑफिस, ट्रेवल, ट्रेन, बस, गाड़ी, बाइक, कनेक्शन जोड़ देना जैसे ऊपर से किरणें आ रही है। और यदि घर पर है और कोई काम नहीं है तो सब एक तरफ और बैठ जाना। सारा परिवार ज्ञान में है तो सारा के सारा परिवार शाम को वैसे ही बैठे जैसे अमृत वेला योग करते हैं। तो योगा। और लास्ट है जेड अर्थात जील एंड जेस्ट अर्थात उमंग उत्साह। सेवा कैसे करनी है? उमंग उत्साह से करनी है, मरमर के, झुक झुक के, जबरदस्ती सेवा नहीं करनी है कोई भी। बाबा ने कहा ऐसी सेवा छोड़ दो जिसमें खुशी खत्म हो जाती है। जो भी काम करो कैसे करो? उत्साह से, उमंग से। अगर नहीं करेंगे तो वो सेवा बर्डन, बोझ अनुभव होगा, वो होगा दंड। तो ये थे सारे ब्राह्मणों की दंड सही था।
ओम शांति।